ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे शैवम.आर की श्रोताओं, अगला कार्यक्रम बच्चों की कहानी का समय है। इसमें आप तिरुविळियाडल पुराण की 8वां भाग को सुनने वाले हैं। इस कार्यक्रम को पेश करते हैं श्रीमती शांता सुंदरराजन जी। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।
बच्चों, पिछली कड़ी में हमने यह देखा कि सोमसुंदर पांडियन के बाद उनके पुत्र उग्र पांडियन राजा बने। उन्होंने इंद्र जैसे देवताओं का गर्व भंग किया। मदुरई की रक्षा के लिए इंद्र वरुण जैसे देवताओं से युद्ध किए। उन्होंने ऋषि मुनियों को वापस मदुरई बुला लिया। सरस्वती और लक्ष्मी देवियों का भरपूर आशीर्वाद मिला। इनके काल में ही तमिल साहित्य का विकास हुआ। वेदों और पुराणों की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई। राजा ने आध्यात्मिक विषयों में भी बहुत ध्यान दिए।
इस दौरान उत्तर भारत में नैमिषारण्य वन में बहुत सारे मुनियों और ऋषियों ने शिवजी का दर्शन करना चाहा। वहाँ अर्भत नामन मुनि आए और कहने लगे कि दक्षिण में स्थित आलवाय यानी मदुरई नगर में सोम सुंदरेश्वर के नाम से शिव जी अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। आप वहां जाकर उनका दर्शन कर सकते हैं और उनसे वेदों का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। अर्भद के कहे अनुसार मुनियों ने ज्ञान प्राप्त किया। इस तरह इस कलयुग में भी शिव जी दक्षिणामूर्ति के रूप में वेदों के तात्पर्य को मौन उपदेश के रूप में सिखाते हैं।
उचित समय पर उग्र पांडियन और कांतिमती अपने सुपुत्र वीर पांडियन को राज्यभार सौंपकर वानप्रस्थ की ओर चल पड़े। वीर पांडियन ने भी कुछ समय तक अच्छी तरह राज्यभार करता था, लेकिन पांड्य देश में भी काले बादल छाने लगे।
बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कितने भी नेक इंसान क्यों ना हो, कभी कभी राह से भटक जाता है। वीर पांडियन के जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ। वह कुछ अवांछित मित्रों के सहवास से धर्म मार्ग से विचलित हो गया, अतः वह राज्यभार ठीक तरह संभाल नहीं पाया। उसके कई बच्चे हुए, परंतु कोई भी राजा बनने लायक नहीं था। केवल एक सतपुत्र था जो अब एक छोटा सा बालक ही था।
अंतिम दिनों में वीर पांडियन अपने करतूतों पर शर्मिंदा होकर बहुत ही पछताया। शिवजी से क्षमा प्रार्थना की। शिवजी ने उसे सांत्वना दी कि जब बालक पांडियन राजा बनने योग्य होगा तब मैं सब बाधाएं दूर करूंगा।
वीर पांडियन के निधन के पश्चात बड़े पुत्रों ने सिंहासन छीनने का प्रयत्न किया, परंतु उनके आपस में झगड़ा हो गया। कोई भी राजा ना बना, लेकिन सब ने राजकोष खाली करते हुए भाग गए। अब केवल वही बालक पांडियन रह गया। स्वभाव से वह नेक और अच्छा नौजवान था। वह सिंहासन के लिए योग्य रह गया था। मंत्रियों ने उसी को राज्याभिषेक करने का निश्चय किया।
परंतु राजकोष में पर्याप्त निधि न होने के कारण वे सोच में पड़ गए। एक राजमुकुट बनाने के लिए भी धन नहीं था। तभी बाहर से एक रत्न व्यापारी आए जो राजमुकुट बनाने लायक तरह तरह की जवाहरात लाए थे। मंत्रीगण ने व्यापारी को बहुत धन्यवाद दिए। मुकुट को कोष में रखते ही अचानक राजकोष नवनिधियों से भर गया। इस पुत्र को वीर पांडियन ने नामकरण भी नहीं किया था, इसलिए राज्याभिषेक के शुभ मुहूर्त में मुनियों ने उसे अभिषेक पांडियन नाम रखा। यह भी शिव जी की ही लीला थी।
जिस पांड्य देश में स्वयं भगवान शिव जी सोम सुंदर पांडियन पहले सम्राट बने थे, उस परंपरा को कायम रखने के लिए तरह तरह की लीलाएं करके हर बार योगी राजाओं को राज सिंहासन पर बिठाकर पांड्य देश को बचाया।
अपने दादाजी की तरह अभिषेक पांडियन भी बड़ा शिवभक्त था। वह अपनी प्रजाओं को एक पिता की तरह देखभाल करता था। यहाँ तक कि इंद्रदेव भी उससे ईर्ष्या करने लगा। इंद्र ने उसको बहुत दुख पहुँचाया, लेकिन भगवान सोमसुंदर ने हर समय एक सिद्ध पुरुष के रूप में प्रकट होकर मदुरै और पांड्य देश को बचाया।
एक बार यही सिद्ध पुरुष मदुरै में आम जनता के बीच में आकर रहने लगे, लेकिन उनका अपना कुटीर या रहने का स्थान नहीं था। किसी को पता ही नहीं चला कि वे कौन हैं और कहां से आए हैं। उन्होंने लोगों के सामने बहुत सारी चमत्कारियां की, रोगियों के रोग को दूर किया और गरीबों की गरीबी हटाई। इससे जनता बहुत खुश हुई। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों पश्चात उन्होंने ऐसी भी चमत्कारियां की जिससे लोग आश्चर्यचकित तो हुए लेकिन घबरा भी गए। उस सिद्ध पुरुष ने वृद्धों को जवान और जवानों को वृद्धों में बदला दिया। इसी तरह पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष। इससे समुदाय में हलचल मच गया।
राजा के पास यह समाचार पहुंचा। उसने उसको अपने राजमहल बुलाया। सिद्ध पुरुष जाने से इनकार कर दिया। उसने राजा को संदेश भेजा कि उसका वास स्थान अंतरिक्ष है और उसे कोई बांध नहीं सकता। राजा समंजस में पड़ गया। उसे कुछ ऐसा ही लग रहा था कि यह पुरुष जो पागल की तरह व्यवहार करता है, क्या वह वास्तव में कोई महात्मा है?
राजा अभिषेक पांडियन स्वयं उस सिद्ध पुरुष के पास पहुंच गया। उन्हें देखते ही पता चला कि वे वही सिद्ध पुरुष हैं जो अक्सर उसके सपनों में आया करते हैं। राजा ने मन ही मन उनसे क्षमा प्रार्थना की। फिर भी उस सिद्ध पुरुष की महिमा को लोगों को दिखाना चाहा। बातें करते हुए सब मंदिर के पास आ पहुँचे। द्वार पर एक पत्थर का बड़ा हाथी था। राजा ने पूछा, क्या आप इस हाथी को गन्ना खिला सकते हैं?
सिद्ध पुरुष के संकेत मिलते ही शिला जैसी हाथी को न जाने कहाँ से जान आई। अपने सूंड से ढेर सारे गन्ने को मुंह में डालकर चबाने लगा। इतना ही नहीं, राजा के गले से मोतियों की माला खींचकर मुंह में डाली। अब राजा को भी गुस्सा आ गया। अपने वीरों की ओर देखते ही वे उसे मारने के लिए हाथ उठाए, परंतु उन सबके हाथ जैसे के तैसे ही अचल हो गए। ऐसा लग रहा था कि राजा के अंगरक्षक स्वयं शिला की मूर्ति बन गए। राजा, मंत्रीगण और आम जनता इस चमत्कार को देखकर अचंभित हो गए। हाथी ने अपने सूंड से राजा को आशीर्वाद दिया। राजा को बड़ा ही आनंद हुआ। उसका संशय ठीक निकला। सिद्ध पुरुष स्वयं शिवजी ही थे, क्योंकि इस विश्व में भगवान के सिवाय और कौन पत्थर में जान ला सकता है या मनुष्य को शिला बना सकता है?
सिद्ध पुरुष उसको और सारी जनता को अपना दिव्य रूप दर्शाया। उन्होंने कहा, हे राजन, हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुए हैं। मदुरै वासी भी बहुत अच्छे लोग हैं। मैं उनके साथ कुछ दिनों रहना और उनके साथ खेलना चाहा, इसीलिए ऐसी लीलाएं की। यह कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए।
बच्चों, इस घटना को लेकर तमिल में एक कहावत है, शिवन पोक चित्तम पोक या शिवन पोक चित्तन पोक। शिवन पोक चित्तन पोक, सिद्ध पुरुष जो करता है वह शिवजी की लीला से ही करता है और सिद्ध पुरुष मन में जो लगे वही करते हैं।
अभिषेक पांडियन का पुत्र विक्रम पांडियन राजभार संभालने लगा। उसके काल में भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, इसके बारे में अगली कड़ी में देखेंगे।